हरे कृष्णा, दिस लेक्चर ऑन भगवद गीता सेकंड चैप्टर सेकंड श्लोका गिवन ऑन 26 अप्रैल 2016 इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाय माई सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चादेशतारिणे.
हरे कृष्णा.
तो अभी लाइट नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हमारे पास दूसरी लाइट है. कौन सी? ज्ञान की लाइट है हमारे पास में, भगवद गीता रूपी ज्ञान की लाइट. तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? फर्स्ट. हाँ जी, दूसरा. फर्स्ट तो हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है. तो सेकंड श्लोक का पढ़ेंगे आज. हाँ, सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक, गीता का सार. तो ये श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस श्लोक से भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं. इससे पहले कौन बोल रहा था? संजय बोल रहे थे, और अर्जुन और धृतराष्ट्र. पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, उसके बाद कई श्लोक जो है वो अर्जुन ने बोले, फिर संजय ने बोला, लेकिन अभी तक भगवान ने नहीं बोला. लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो पिछले अध्याय के अंदर प्रथम अध्याय के 25वां श्लोक निकाल सकते हैं, 25th श्लोक मिला. तो पिछले जो अध्याय था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इस अध्याय के 25वें श्लोक में आप देखें, अगर उसके अनुवाद में लिखा है, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा. तो पहले भी भगवान बोल रहे हैं, लेकिन उसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं. कैसे बोल रहे हैं? संजय उवाच, इससे पहले लिखा है 24वें श्लोक में संजय उवाच. तो मतलब संजय जब देख रहे थे और बैठकर वो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, तब उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर 31 सारे कुरुओं को देखो. तो भगवान ने वहां पर सिर्फ इतना ही कहा कि सारे एकत्रित कुरुओं को, कुरुवंशियों को देखो. तो भगवान ने रथ को बीच में ले गए और ये कहा. तो भगवान बोले तो हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं. इसलिए उस श्लोक के ऊपर नहीं लिखा श्री भगवान उवाच. लेकिन जब श्री भगवान उवाच लिखा, तो ये पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का, दूसरा श्लोक जिसमें पहली बार भगवान बोल रहे हैं. तो इस श्लोक में बोलते हैं, साथ में हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे. श्री भगवान उवाच, कुतस्त्व कश्मलम् इदम् विश्वे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. श्री भगवान उवाच, कुतस्त्व कश्मलम् इदम् विश्वे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. श्री भगवान उवाच, कुतस्त्व कश्मलम् इदम् विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे शब्दार्थ. श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा. कुतः, कहां से. त्वा, तुमको. कश्मलम, गंदगी, अज्ञान. इदम, ये शोक. विश्व में इस विषम अवसर पर समुपस्थितम प्राप्त हुआ है। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते हैं, दुष्टम आचारित अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो ना ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का कर्म कारण अर्जुन। हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं, उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन गेस्ट श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे और साथ साथ इस श्लोक को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। तो पहली बार में उन्होंने एक चीज बोल दी, श्री कृष्ण और भगवान। मतलब कोई व्यक्ति बोले, भगवान आप किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा कर रहा था। तो भगवान कौन? तो इस बात में आपको कोई संशय ही नहीं रह गया कि देवी जी भगवान है, कि साईं जी भगवान है, कि दुर्गा जी भगवान है, कि शिव जी भगवान है, कि राम जी भगवान है। उन्होंने लिखा तात्पर्य के शुरू होते ही, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। अभिन्न मतलब अलग नहीं है, इसीलिए हर जगह लिखा गया है श्री भगवान उवाच। अगर उन्हें लिखना होता कि कृष्ण भगवान है या नहीं, तो इसलिए वो लिखते कृष्ण उवाच, लेकिन श्री भगवान उवाच। जैसे एक डायरेक्टर ऑफिस होता है, डायरेक्टर ऑफिस के अंदर मिस्टर सुनील कुलकर्णी जी डायरेक्टर हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब आगे से जब मेल जाएगा ऑफिस का, चिट्ठियां जाएंगी, लोगों को बोला जाएगा, तो ये नहीं बोलेंगे सुनील कुलकर्णी जी बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? डायरेक्टर साहब ने बोला है। तो मतलब डायरेक्टर कौन है ये पब्लिक को पता होता है, और फिर वो दोनों सीट से अभिन्न होते। इस तरह से भगवान कौन है ये बात साबित कर रही है कि कृष्ण उवाच, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ, इसके स्टार्टिंग में जो फोटो बना है भगवद गीता में, इसमें कृष्ण रथ को चला रहे हैं और अर्जुन उसमें बैठे हैं। तो थे ही वहां पर दो लोग, एक श्री कृष्ण और एक अर्जुन। कृष्ण भगवान है, अर्जुन जीव है हमारी तरह। तो इसलिए आप कोई संशय ही नहीं रह गया कि भगवान कौन है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। तो हम भगवान को तीन तरह से पूरी सृष्टि के लोग जानते हैं। पहला है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में एक तो होता है गीता, एक होती है भागवतम। गीता वो है जो महाभारत के युद्ध के समय, जो 18 दिन तक युद्ध चला, उसमें 45 मिनट में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनकी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए जो ज्ञान दिया 700 श्लोकों में, उसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। गीता मतलब गाना, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, इसलिए भगवत गीता। लेकिन जब परीक्षित महाराज, जो पूरी पृथ्वी के राजा थे, पांडवों के वंशज में आखिरी वंशज थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, तो उनको जब सर्प ने डसने का श्राप मिला श्रृंगी ऋषि से, तो वो सीधे चले गए शुकताल, एक जगह है हरिद्वार से पहले शुकताल, और वहां जाकर उन्होंने जितने भी ऋषि मुनि थे उन सबसे पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, 7 दिन बाद, उसको क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी, जो शिल वेद व्यास, जिन्होंने गीता लिखा, महाभारत लिखा, उनके जो पुत्र हैं, उनका नाम है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 श्लोकों में, कितने श्लोकों में? 18,000 श्लोकों में भगवान का ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया, और 7 दिनों तक 24 घंटे उनकी, कृष्ण भगवान की चर्चा चली, और उस ग्रंथ को कहते हैं श्रीमद् भागवतम या फिर भागवत पुराण, जो कि 17 पुराणों के बाद वेद व्यास जी ने लिखा 18वां पुराण। 17 पुराणों में उन्होंने अलग 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 तरीके से कर्म कांड की विधियां बताई कि आपसे पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे, आपने अगर कुछ स्थापना करनी है तो उसके लिए क्या मंत्र होते हैं, आपको इस रोग से बचना है तो कौन से मंत्र हैं, इस भगवान की उपासना करनी है, इस देव की उपासना करनी है तो ये मंत्र है। लेकिन जब वो दुखी थे 17 पुराण लिखने के बाद, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, जिनका नाम था नारद मुनि, तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने पूछा नारद मुनि से कि नारद जी मैंने 17 पुराण लिखे हैं, मत्स्य पुराण, कुर्मा पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, लेकिन सारे पुराण लिखने के बाद में अभी तक मेरे हृदय में शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उनके गुरुदेव ने कहा, क्योंकि वेदव्यास तुमने अभी तक भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा, और ये आत्मा जब तक भगवान का गुणगान नहीं करती है कभी शांति प्राप्त नहीं होती है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, आपको हो सकता है धन मिल जाए, जमीन मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, और वो रोग आदि में वापस चली भी जाती है, जैसे आती है वैसे चली जाती है। ऐसे अनेकों उदाहरण मैंने अपने जीवन में स्वयं देखे हैं। बहुत पैसा है, कमाने में लगे रहे, अंत में ऐसी बीमारी हो गई कि जितना कमाया था वो सारा खर्च हो गया, ना बच्चों के लिए कुछ बचा पाए ना कुछ हुआ, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से धन मिले ना मिले वो तो प्रारब्धों के अनुसार मिल ही जाना है या नहीं मिलना है, लेकिन शांति का अनुभव तभी होता है जब व्यक्ति भगवान का हरि नाम लेता है। जब ये आत्मा उस परमात्मा का नाम लेती है तो वो संपूर्ण शांति का अनुभव होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति में गच्छति। शांति उसी व्यक्ति को मिलेगी जो ये जानेगा इस पूरे संसार के भोगने वाले तो खाली कृष्ण है, न हनुमान जी भोग सकते हैं, न शिव जी भोग सकते हैं, न दुर्गा जी भोग सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं अगर अपराध लगेगा तो हमें भी लगेगा ना, आपसे पहले तो हमें लगेगा, पाप लगेगा तो हमें लगेगा पहले, आपसे पहले। हम भगवान के आगे बैठकर, भगवान देवी देवता के आगे बैठकर बोल रहे हैं बात, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो 33 करोड़ देवी देवता हाथ ऊपर करके नाचते हैं, अरे चलो एक व्यक्ति तो समझदार बना। हाँ, क्योंकि क्या बोलने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बोलने लगा तो इससे सब प्रसन्न हो जाते हैं, सभी देवी देवता आनंद होकर फूलों की वृष्टि करने लगते हैं, कहते चलो एक जीवात्मा तो समझदार बनी, भगवान को समझ गई, अन्यथा लोग तो भ्रमित हैं, थोड़े से पैसे के चक्कर में इधर से उधर उधर से इधर घूम रहे हैं, अशांति ही अशांति है, चाहे धन लॉकर में कितना भी हो लेकिन अशांति बनी पड़ी है। तो इसलिए भगवान को समझने के 3 रास्ते भागवतम में बताए गए हैं। भागवतम कहती है, वदन्ति तत्वविदस्तत्वं यज्ञानामदं वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, जैसे यथा धूप प्रकाश, दूसरा सूर्य की तथा सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखीय सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाते हैं वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य से परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। तो यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट स्पिरिचुअलिस्ट, देयर आर सो मेनी सोसाइटीज, इतनी सोसाइटी चल रही है, इतने आश्रम है, इतने बाबा जी हैं, इतना सब कुछ चल रहा है संसार में, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, किसकी तरफ जाएं क्या करें, ओम शांति बोलें, आर्ट ऑफ लिविंग सीखें या फिर हरे कृष्णा सीखें, क्या करें प्रभु जी, सब आते हैं, सब अपनी अपनी गुणगान गाते हैं, सब कहते हैं हम बढ़िया हम बढ़िया हम बढ़िया, लेकिन हम कहते हैं हम बढ़िया नहीं है, हम तो शास्त्र बोल रहे हैं। ये गीता जिसके ऊपर कोर्ट भी है ना, कोर्ट कोर्ट में जो कोई मर्डर कर देता है तो उसको कहते हैं इस गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वो बोलता है खूनी व्यक्ति है, अभी 4 दिन पहले मर्डर करके आया है, उस पे धारा चल रही है, और वो हाथ रख के बोलता है जी मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं तो गुमराह हो गया था, तो कोर्ट मान लेती है। तो जो इसके ऊपर हाथ रख के बोलता है उसको सच मानते हैं, जो इसमें लिखा है वो झूठ लिखा है। इसमें लिखा है वो सच लिखा है। तो यह हम नहीं बोल रहे हैं, हरे कृष्णा या इस्कॉन, हमेशा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं। दुनिया कहती है जी हमने अभी हमारे बाबा जी ने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने ग्रंथ लिखे। यहाँ बाबा जी का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सीधा भगवान का सिस्टम है। जो कुछ बोल रहे हैं वो भगवान बोल रहे हैं, बीच में कोई नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते थे हम सब तो पोस्टमैन की तरह हैं। एक पोस्टमैन आपके घर पे आता है, घंटी बजाता है, टिंग टोंग, आप बाहर निकलते हैं, कहता है एक चेक लेके आया हूँ आपके लिए। कितने का है? 1,00,000 रुपए का LIC का चेक। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी मेरी तनख्वाह 7,000 रुपए। 7,000 वाला आदमी 1,00,000 का चेक कैसे दे सकता है? भाई तुम्हारे पास तनख्वाह 2,00,000 हो तब तो तुम 1,00,000 दे सकते हो। तो कहता है जी मैं तो कोरियर वाला हूँ, इधर का चेक उधर कर रहा हूँ, बस मेरी तनख्वाह 7,000 है। तो उसी तरह से हो सकता है हमारे अंदर अपूर्णता हो, हमारे अंदर समझ ना हो, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ये 100% करेक्ट है, क्योंकि ये एज इट इज यथारूप भगवान की वाणी आप तक आ रही है। तो 1,00,000 का चेक ऊपर से लिया और आपके सामने दे दिया। हमारी तनख्वाह 7,000 हो सकती है, लेकिन आपका चेक पूरा 1,00,000 का है। तो ये जो ज्ञान है ये पूर्ण है कि भगवान कृष्ण से ऊपर बढ़कर और कुछ नहीं है इस संसार में। तो यहाँ पर तीन तरह से बताया, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। भागवतम कहता है ब्रह्मेति का क्या मतलब है? सूरज का जो प्रकाश है, सूरज की जो किरणें हैं, ये ब्रह्म स्वरूप से निकली हुई हैं। जब सूरज की तेज निकलता है तो हम सूरज की तरफ देखें, देखा नहीं जाएगा हमसे, इतना तेज है। ऐसे ही भगवान के शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज निकलता है। और इसीलिए जो लोग ब्रह्म ज्योति की चर्चा करते हैं, हम शरीर को त्याग कर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, जो ऐसी बातें करते हैं वो लोग सच में ब्रह्म ज्योति तक ही जाएंगे, भगवान की जो तेज निकल रहा है उसमें जाएंगे और वहां जाकर रुक जाएंगे। उसके ऊपर के जो ज्ञानी हैं वो भगवान का जो ऊपर का स्वरूप है, मतलब जैसे सूरज का जो गोला है, तो भगवान का एक धाम है उसको बोलते हैं वैकुंठ धाम। तो उस वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाएं, उन लोगों को कहते हैं परमात्मा के दर्शन करने वाले। तो कुछ लोग बोलते हैं हम परमात्मा तक जाना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा करी, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति की चर्चा हमने की थी। तो भगवान के लोक में चले जाएंगे, लेकिन भगवान के लोक में भी एक महान नेता होता है ना, जैसे इस इंडिया के प्लैनेट में इंडिया कंट्री है, उसका एक लीडर है प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका जाएंगे तो उनका भी एक लीडर है, प्रेसिडेंट। ऐसे ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबके एक एक लीडर है। तो क्या सूर्य लोक का कोई लीडर नहीं होगा? तो सूर्य की एक किरण है, दूसरा सूर्य का गोला है, और तीसरा सूर्य के अंदर सूर्य देव है जिनका नाम है विवस्वान, नाम भी है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की किरणें हैं, उनकी शीतलता है, उसके बाद गोला है, गोले के अंदर उनके देवता हैं, कंट्री के अंदर उनका नाम है सोमदेव। तो इस तरह से सबके नाम है और ये सारी गद्दियां बदलती रहती हैं। आज विवस्वान है, कल कोई और होंगे, और अभी चंद्रमा के देवता सोमदेव हैं, कल कोई और होंगे, इंद्र के देवता अभी कोई और हैं, बाद में कोई और होंगे। इस टाइम मनु जो है उनका नाम है विवस्वत मनु, वो भी मनु भी बदल जाएंगे। लोग सोचते हैं एक मनु थे, एक शत्रुवती, सृष्टि की रचना हुई वहीं खत्म, नहीं, ये साइकिल घूम रहा है। आज जो मनु है कल वो बदल जाएंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा। पहले सुरोचिष मनु थे, फिर अभी विवस्वत मनु है, तो इस तरह से ये मनु भी बदलते हैं, 14 मनु ट्रांसफर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये गद्दियां हैं, सीट हैं। डायरेक्टर की सीट एक होती है, लेकिन उसमें डायरेक्टर के रिटायरमेंट के बाद दूसरे 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 आते रहते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम ऊपर के प्लैनेट में चलता है। तो सबसे समझदार वो व्यक्ति है जिसकी जान पहचान प्राइम मिनिस्टर से हो। तो एक आदमी तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद उसका एक पार्लियामेंट है, और उसके बाद उसकी शक्ति वहां है, कमिश्नर, थानेदार, सब इंस्पेक्टर, ये सब तरह। अभी किसी की जान पहचान अगर सब इंस्पेक्टर से है, उसके बाद की सीढ़ी है कि अंदर पार्लियामेंट तक जा सकता है, और तीसरी सीढ़ी है कि वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जानता है। तो कौन सबसे ज्यादा समझदार है? जो प्राइम मिनिस्टर को जानता है ना। ऐसे ही एक बार एक गांव में क्या हुआ, कभी रेलगाड़ी नहीं आई थी, छुप 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 रेलगाड़ी कभी नहीं आई थी वहां पे। तो जब पहली बार अंग्रेजों का शासन आया तो हिंदुस्तान में रेलगाड़ियां आने लगी। जब हिंदुस्तान यहाँ रेलगाड़ी आई तो गांव के जो मुखिया थे उन्होंने समझदार 3 लड़कों को बुलाया, होते हैं ना गांव में समझदार, और बोला कि जाओ भाई पता करके आओ रेलगाड़ी नाम की चीज होती क्या है, सुना है बड़ी अच्छी चीज होती है, बड़ी काम की चीज है। तो जब वो भाग के गया पहला लड़का, तो उसने देखा जो रेलगाड़ी की पटरी है, रेलवे ट्रैक, उसके ऊपर दूर से एक बल्ब का गोला चला आ रहा है नजदीक, करता हुआ एक गोला चला रहा है। वो भाग कर गया, बोला मुखिया जी मुखिया जी, पता चल गया रेलगाड़ी क्या है। क्या क्या? एक जब लाइट का गोला बड़ा सा रेलवे ट्रैक पे दौड़ता है ना, उसकी रोशनी को कहते हैं रेलगाड़ी। तो दूसरे को बोला मुझे नहीं लगता, मुखिया ने कहा कि ये सही बोल रहा है, जाओ और तुम पता करके आओ। वो दौड़ कर गया, जब तक रेलगाड़ी थोड़ा नजदीक आ गई थी रेलवे ट्रैक पे आके रुक गई। जब वो रुक गई रेलवे ट्रैक पे आके, तो उसने देखा आगे लाइट है, पीछे इंजन है, इंजन के पीछे बहुत सारे 20-22 डब्बे लगे हुए हैं। तो वो भी भागा और भागकर बोला मुखिया जी मुखिया जी, मैंने पता लगा लिया, आगे लाइट होती है, उसके पीछे इंजन होता है, इंजन के पीछे बहुत सारे डब्बे होते हैं और अंदर बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, यात्री होते हैं। तो मुखिया बोला अच्छा रेलगाड़ी ऐसे है लेकिन चलती कैसे है? कह रहे ये तो पता नहीं। तो फिर तीसरे को बोला तुम जाओ और पूरी जांच पड़ताल करके लौटना। तो वो जब तीसरा भाग के गया तो उसने थोड़ा समय लगाया, हर डब्बे में चढ़ा, देखा, तब उसे पता चला कि आगे लाइट है, उसके पीछे इंजन है, इंजन के पीछे डब्बे हैं, डब्बों में यात्री हैं, लेकिन इंजन को चलाने वाला कौन है? रेलवे ड्राइवर, ड्राइवर है। और फिर ये आप वापिस आया और बोला मुखिया जी रेलगाड़ी पूरी पता चल गई क्या होती है, उसमें एक ड्राइवर होता है, अगर ड्राइवर उतर जाए तो कई कई घंटे रेलगाड़ी लेट हो जाती है, तो रेलगाड़ी एक इंच भी नहीं बढ़ सकती जब तक उसमें ड्राइवर ना हो। तो अब ये तीन परिस्थितियों में तीन परिभाषा करने वाले तीन लोग थे, पहले ने भी की, दूसरे ने भी की और तीसरे ने भी की। सबसे समझदार कौन? लास्ट वाला। तो इसीलिए भागवतम कहती है भगवान को समझने के भी तीन स्तर हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो व्यक्ति ब्रह्मेति ब्रह्म को समझता है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वो उसकी लाइट ही है रेलवे की जो आगे की देखकर वापिस आ जाएगा और एक समय उसको वापिस आना पड़ेगा। दूसरा है जो समझदार, जो कहता है परमात्मा, परमात्मा स्वरूप क्या है परमात्मा का? निराकार निराकार निराकार। वो समझ ही नहीं रहा कि भाई भगवान जो है उनके बिना कोई भी ब्रह्मांड की छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़ा कण हिल नहीं सकता। छोटी गाड़ियों मारुति या बड़ी गाड़ियों BMW या फरारी बिना ड्राइवर के चल सकती है? तो फिर ये प्लैनेट कैसे चल जाएंगे अपने आप? इतनी सारी चीजें हो रही हैं, सूर्य रोज पूर्व दिशा से निकलता है, किसने बनाया ये नियम? कैसे निकल आता है रोज? कौन है इसका लीडर? भगवान, भगवान इति शब्द थे। वो भगवान कौन है? तो शुरुआत में बताया कृष्ण और भगवान अभिन्न है। आगे देखें तो इसी में जब हम पढ़ेंगे तो बताया गया है, अध्यात्मवादी तक हमने पढ़ा था, यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। तो सारे लोग एक ही विषय जानना चाहते हैं, भगवान कौन, भगवान कौन। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक के भीतर बातें, भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं, तीनों अलग अलग हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। तो कौन है भगवान? जिनके पास ये छह चीजें हैं, कौन कौन सी? साथ में बोलिए धन, सब लोग सब में साथ में बोलिए धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग। ये छह चीजें जिसमें इकट्ठी हो, इसमें से एक चीज हर एक में होगी। कोई सुंदर होगा लेकिन उसके पास वैराग्य नहीं होगा, उसके पास धन नहीं होगा। किसी के पास धन होगा तो देखने में कुरूप होगा, और कुरूपता नहीं होगी, कुछ नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा, वो बड़ा लालची होगा। हर एक के पास कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन जिसके पास इन छहों चीजों की पूर्णता है वो छह ऐश्वर्यशाली भगवान कहलाते हैं। तो अब आप कहेंगे क्या कृष्ण में ये छहों गुण हैं? तो आइए चर्चा करते हैं। धन, धन सबसे ज्यादा इंडिया में किसके पास है? किसके पास है धन सबसे ज्यादा? अंबानी के पास में सबसे ज्यादा धन, रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो अभी सन फार्मास्यूटिकल्स भी आ गए आगे उनसे। तो ये इस तरह से रिलायंस, ये सारे लोग धनी कहलाते हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते इस संसार का सारा धन हमारे पास, कह सकते हैं? अगर कह सकते होते तो फिर ये हर साल बिजनेस ग्रो करने की बातें क्यों करते? क्योंकि अभी ये और चाहते हैं, इन पे है नहीं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण जो है उनको कहा जाता है समा सहस्त्र लक्ष्मियां जो है ना उनके चरणों की सेवा करती है। सहस्त्र लक्ष्मी, सहस्त्र मतलब होता है थाउजेंड, एक लक्ष्मी अगर किसी के घर में आ जाए ग्रह लक्ष्मी रूप में तो आदमी बड़ा भाग्यशाली समझता है, हमारे घर लक्ष्मी जी आई है, हमारे घर लक्ष्मी जी आई है। सहस्त्र लक्ष्मियां चरण में बैठी हुई है भगवान के, उनको धन की आवश्यकता नहीं है। और हर आदमी चाहे वो कोई भी हो भगवान के आगे लक्ष्मी पूजन करने में लगा हुआ है कि हमें लक्ष्मी जी दे दो, नारायण मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है नारायण के बिना लक्ष्मी आ तो जाएगी लेकिन टिकेगी नहीं आपके घर में, तो टिकेगी तभी जब आप नारायण की सेवा करेंगे। तो सहस्त्र लक्ष्मियां उन कृष्ण के चरणों में सेवा कर रही हैं तो इसलिए वो सबसे ज्यादा धनवान बन जाते हैं, अत्यधिक धनवान, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता। हो सकता है अरे हजार लक्ष्मियां पैर की सेवा कर रही, चरण दबाए, दासी है, जिसकी दासी हजार लक्ष्मियां हैं उसको किस लक्ष्मी की जरूरत है, उसको नहीं चाहिए। तो ये कृष्ण है धनवान। शक्ति, शक्ति कैसे भाई, शक्ति शक्ति है। जो एक वेट लिफ्टर होता है ना अमेरिका में, वो जब वेट उठाता है तो बहुत जोर लगाता है या और मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके 170 किलो उठाकर गोल्ड मेडल लेता है, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कितना प्रोटीन शेक पीता है, कितनी एक्सरसाइज करता है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे शरीर तोड़ता है, उसके बाद सिर्फ 170 किलो उठाकर गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं लोग, कहते हैं ही इज चैंपियन, शक्तिशाली एनर्जेटिक मैन है। लेकिन एनर्जेटिक मैन भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। मोहम्मद अली जो थे एक घूसा मारते थे तो सामने वाला बिना किसी सेकेंड राउंड के ऑल आउट हो जाता था। ऐसे कैशियस के लिए मोहम्मद अली आज एक चाय का कप नहीं उठा सकते। भगवान ने 7 साल की उम्र में एक पर्वत उठाया, क्या नाम है उसका, गोवर्धन। तो कैसे उठाया, या या ऐसे करके उठाया, कैसे उठाया, मुस्कुराते हुए टक ऐसे उठाया, उंगली ऐसे करी और इसके नाखून पे, नख ऊपर गिरिधार्यो, नख के ऊपर गोवर्धन उठा लिया, नाखून के ऊपर। और नीचे वर्णन आता है आचार्यों द्वारा, ऐसे उठाया जैसे कुकुर मुत्ता मशरूम को हम अपने हाथ में उठाएं, जितना वजन मशरूम उठाने के लगे ना वो। अच्छा उसके बाद लगाया ना तो उनकी जान बड़ी ऐसे हो रही होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, गिर ना जाए ऐसे था। भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और कितना बड़ा पर्वत था, आज उसकी परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, उस समय तकरीबन 40 किलोमीटर की परिक्रमा थी, 40 किलोमीटर परिक्रमा। और उसके नीचे पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासी आ गए थे, जिनको अलग अलग, आप सोचिए ब्रजमंडल 84 कोस का है, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 84 × 3 मीन्स कितना, कितना हुआ, 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर बड़ा पर्वत उन्होंने अपने हाथ की नखून पे उठा लिया, 7 साल के बच्चे ने, जिनके हाथ शरीर में कोई मसल नहीं थे, बॉडी बिल्डिंग नहीं करी थी उन्होंने कोई भी। और फिर उसके बाद कैसे खड़े थे, टेढ़ी टांग करके खड़े थे, सीधे भी नहीं खड़े थे, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर का लेफ्ट राइट होता है ना तो स्पाइनल कॉर्ड पूरा उसका स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर पड़ा रहता है बेचारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। क्या हुआ, बोले वजन उठाया था कमर टेढ़ी हुई और टूट गई, स्लिप डिस्क हो गया, लेकिन भगवान ने टेढ़ी टांग करी हुई है और पर्वत उठाया हुआ है। फिर क्या कर रहे थे उसके बाद, ये नहीं खाली ध्यान था गिर ना जाए उंगली टेढ़ी ना हो जाए, बांसुरी बजा रहे थे भगवान, हाँ म्यूजिकल फॉर्म में अपना आनंद ले रहे थे। और उनकी बांसुरी की ध्वनि से जितने जितने व्रजवासी उसके नीचे थे सबको ऐसा लग रहा था हमारी रक्षा प्रदान करने वाले ये हैं, और सब अपने अपने संबंध भगवान से जोड़ पा रहे थे। जो पुत्र थे उनको पिता रूप में दिख रहे थे, जो सखा थे उनको मित्र रूप में दिख रहे थे, जो माताएं थी उनको पुत्र रूप में दिख रहे थे, गोपियों को पति रूप में दिख रहे थे, और सबको भगवान दर्शन दे रहे थे। ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरे पास खड़े हैं। 3-डायमेंशनल पिक्चर भी फेल हो जाए, मतलब भीड़ में आप खड़े हो सबसे लास्ट में और बीच में मॉडल खड़ा हो तो आपको दिखाई नहीं देता, आप कंधों पे चढ़ेंगे ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन वहां का 3-डायमेंशनल नेचर ऐसा था सबसे कॉर्नर वाला व्यक्ति को भी लगता था भगवान मेरे साथ ही खड़े हुए, ये अमेजिंग चीज। और इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उसके बाद भी पानी का एक बूंद अंदर नहीं गया। है ऐसा कोई सिस्टम जिसे एसी के डक्ट में पानी लगा लगा के रुक जाते हैं, उसमें से ड्रिप करके पानी अंदर कमरों में आ जाता है, इतनी साइंस होने के बाद, और इतना बड़ा पर्वत भगवान ने उठाया अंदर एक बूंद पानी नहीं आया। वर्षा कैसी हो रही थी पता है, समवर्तक वर्षा हो रही थी, हाथी के सूंड के बराबर की बूंदें गिर रही थी लेकिन अंदर एक बूंद नहीं आई। है ऐसा सिस्टम, तो ये भगवान का करिश्मा है। तो हो सकता है उनसे कोई शक्तिशाली ज्यादा, तो सर्वशक्तिमान अगर है तो कौन है, कृष्ण है। यशस्वी, यश, सबसे ज्यादा फेमस, आज भी जो पुराने जमाने के कलाकार थे, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और पता नहीं कौन कौन, लेकिन अभी किसी बच्चे से बोलो जो 7वीं में पढ़ता है ना, अरे पता है कल अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है, ऐ बंद करो ना पापा, क्या बोलते हो आप, हाँ मुझे तो वो दिखाओ, किसकी, नए कोई कलाकार की पिक्चर दिखाओ। आपको भी आज बोला जाए राजेश खन्ना की पिक्चर लगी है PVR में, कोई देखने नहीं जाएगा, हाँ सब चाहते हैं कुछ नया। लेकिन भगवान ने गीता कितने साल पहले बोली, 5000 साल पहले। लेकिन 5000 साल बाद भी एम्स के लोग अपना काम छोड़ के सुनने आ जाते हैं, क्यों, यशस्वी है, द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इज कृष्णा, नोबडी कैन बी दैट मच फेमस, करोड़ों करोड़ जन्मों से उनका यश फैल रहा है। ये है भगवान के अंदर के गुण। कोई बाबा जी आए होंगे 200 साल पहले ना, वो गायब हो जाता है, उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन कृष्ण को सब आज याद रख रहे हैं। तो ये है भगवान का यश। और आगे है सौंदर्य, ब्यूटी। ये ब्यूटी जो है ना, स्त्री के अंदर जो ब्यूटी होती है, वो कहते हैं कामदेव जो है ना, उसका एक अंश किसी में आए, एक अंश, 1% ऑफ कामदेव पर्सनैलिटी, पूरे कामदेव का जो शरीर है उसका एक अंश किसी स्त्री या पुरुष में आए तो वो मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स बन जाता है। तो आप सोचिए कि भगवान जो है, उनको पता है क्या कहा गया है, भगवान को कहा गया है कंदर्प कोटि कमनया विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान के अंदर कंदर्प कोटि, कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़, करोड़ों कामदेव का यह पूरा मिक्सचर चूरा बना के, सॉल्यूशन बनाकर पिला दो किसी को, उसकी जो सुंदरता हो वो कृष्ण की सुंदरता है। द्वारका में एक बार भगवान चल रहे थे तो उस समय शीशे नहीं होते थे, मिरर, तो भगवान का जो फ्लोर था चिंतामणि रत्नों का बना था, एकदम मार्बल से भी ज्यादा, मतलब चांदी से भी ज्यादा, एकदम डायमंड जैसा चमकता हुआ। तो भगवान एक दिन कमर पे हाथ रखकर नीचे देखा तो कहा, ओह इतना सुंदर आदमी कौन है, अपना चेहरा देखकर उनको लगा इतना सुंदर, पूरी सृष्टि को देख रहे थे तो कोई सुंदर नहीं दिखा, जब अपना देखा तो बहुत सुंदर लगा, और कहा इतनी सुंदरता मेरे अंदर है, इतनी सुंदर मैं हूं, लेकिन मैं तो अपनी सुंदरता का रस स्वादन ही नहीं कर पाता हूं, तो क्या करूं, तो मुझे अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने शरीर से राधा रानी को बाहर निकाला और कहा अब तुम मेरा गुणगान करो ताकि मैं समझ पाऊं मैं कितना सुंदर हूं। तब राधा रानी ने कहा कृष्ण तुमसे सुंदर तो इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता, यह सुंदरता। आपसे पूछा जाए ईयर 2000 की मिस यूनिवर्स का नाम बताइए, बता सकते हैं कोई, प्रभु जी, माताओं को तो नहीं याद होगा, प्रभु जी याद हो सकते हैं, याद है किसी को, 2005 की मिस यूनिवर्स, 2010 मिस यूनिवर्स, 2015 मिस यूनिवर्स, कुछ याद नहीं रहता, पूरा जीवन डाइटिंग करके खा पी सूंग सूंग के पूरा जीवन निकाल देते हैं, और पता नहीं क्राउन ले लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और उसके बाद उनको पब्लिक याद भी नहीं रखती, जस्ट मेयर मेंटल स्पेकुलेशन, ये मानसिक धारणा है, हम कुछ बन जाएंगे तो बड़ा याद रखेंगे। एक दिन व्यक्ति ने मुझसे बोला आप लोग वैराग 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 करते हैं, आपके मन में कोई अभिलाषा नहीं कुछ बने, मैंने कहा आप बन जाइए, क्या बनना चाहते हैं, है मेरे मन में प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा, मैं क्या होगा उससे, अरे लोग जानेंगे, मैं कहा अच्छा बताओ अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट कौन है, तो चुप हो गया, मैं कहा वहां के को तुमने जानते, तुम्हें वहां के नहीं जानेंगे, लेकिन कृष्णा ऐसे हैं जिनको 700 कंट्री के लोग जानते हैं, पूरा वर्ल्ड आज बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ तो इसलिए भगवान से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। ज्ञान, ज्ञान सबसे ज्यादा भगवान में कैसे है, इंजीनियर के पास इंजीनियर का ज्ञान होता है, डॉक्टर के पास डॉक्टर का ज्ञान होता है, लॉयर के पास लॉयर का ज्ञान होता है, मैनेजर के पास मैनेजमेंट का ज्ञान होता है, पर भगवान के पास सबका ज्ञान होता है। इसीलिए डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं ना और उसके बाद लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है तो वो भी पेशेंट को बोलते हैं वी हैव डन अवर टास्क रेस्ट इज ऑन गॉड, हमने अपना काम किया बाकी भगवान भरोसे, वो ही भगवान के भरोसे है। इंजीनियर अपनी मशीन बनाता है, सिलेंडर फिट करता है, सब कुछ करता है, लोग बोलते हैं फटेगा तो नहीं, कह रहे जी देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा कर लिया है बाकी भगवान की इच्छा। अरे हर आदमी भगवान की इच्छा पे चला जाता है, इसका मतलब उनसे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है, सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं और देख रहे हैं कि भाई इसको क्या बनाना है, इसको क्या करना है। इसीलिए इंजीनियरिंग का पेपर देने वाला भी बोलता है आज जाकर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, और PMT का जो देने जाता है ना CPMT का, वो भी बोलता है आज भगवान को भोग लगाऊंगा, भगवान मुझे डॉक्टर बना दो, वो कहता है मुझे इंजीनियर बना दो। जिसके पास ज्ञान होगा वही तो डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा, इसका मतलब वो सर्व ज्ञाता है, भगवान सारी चीजों का ज्ञान रखने वाले हैं, और त्याग, त्याग की भावना भगवान में जितनी है ना, इतनी हमें है ही नहीं। हम लोग तो 1000 रुपए में से 100 रुपया किसी को दे देना तो अपने हम अंदर ही अंदर फूले नहीं समाते, मैं बड़ा त्यागी हूँ। मैंने क्या किया, अपने 50,000 की तनख्वाह में से 1,000 रुपए भगवान को दे दिए। प्रभु जी बस हम ही हैं भगवान के भक्त, त्यागी हैं हम। क्या किया हमने, कोई त्याग नहीं हमारा। भगवान ने क्या त्याग किया, मथुरा जैसी जो राज्य था जिसमें मथुरा के राजा मथुराधीश द्वारा, और वो रातों रात द्वारका चले जाते हैं सब कुछ त्याग करके। वो यशोदा मैया जो उनसे इतना प्यार करती हैं, वो राधा रानी जो उनसे इतना प्रेम करती हैं, वो गोपियां जो उनसे इतना प्रेम करती हैं, भगवान सिर्फ उनको छोड़कर इसीलिए जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता, आई एम नॉट अटैच्ड। हाँ, कोई कितना भी प्रेम करे, कोई कुछ भी करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉन अटैचमेंट है उनका, वैराग्य है उनके जीवन में, त्याग। हमारे पास तो कोई जो घर में जानवर है ना, वो भी 10 बार सल्यूट मारे तो इतना प्रेम हो जाता है उसको, छोड़ने के लिए आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो हम त्यागी है ही नहीं। हमारा फोन गुम हो जाए तो हमारे से हमारे को ब्लड प्रेशर हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, मेरा फोन गुम हो गया। तो इस तरह से सोचिए, भगवान सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये है भगवान की महानता, त्याग। और आप देखिए, सुदामा जैसे ब्राह्मण जो भगवान के घर आए, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्या किया, अपना सब कुछ प्रदान किया, सब कुछ दे दिया, मित्रता भी दे दी, धन भी दे दिया, और जितनी द्वारका थी ना उसी के समरूप उन्होंने सुदामापुरी भी बना दिया एज इट इज। लेकिन उन्होंने क्या दिया था, कुछ भी नहीं दिया। फिर भी भगवान ने कहा, सुदामा मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे से नीचे स्तर पे हूँ। तो सुदामा ने पूछा, क्यों भगवान? तो भगवान ने कहा, सुदामा तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने उधार पे चावल लाकर मुझे भेंट किया। मैंने जो दिया वो तो मेरे पास था, मैं तुम्हारे बराबर तब बनूंगा जब सब कुछ देने के बाद मैं उधार पर सामान लाऊं और फिर तुम्हें दोबारा से दे सकूं, तब मैं तुम्हारे स्तर पे आऊंगा। मैं तो तुम्हारे स्तर पर तब भी नहीं आऊंगा जब मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूं। जो है वो दे दिया तो क्या बड़ी बात है, जो नहीं है वो उधार लेकर दे दे तो वो है बड़ी बात। सुदामा तुमने वो किया, उस चावल के लिए तुमने ये नहीं सोचा लौट करके मैं पैसे कहां से लाऊंगा उस चावल का ऋण चुकाने के लिए। ये है महानता, ये त्याग है। तो भगवान देखिए, उनसे बड़ा कोई त्यागी हो सकता है? नाम रख सकते हैं विशाल त्यागी, लेकिन त्यागी रखने से त्यागी नहीं होते हैं, त्यागने से त्यागी होते हैं। तो भगवान से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। आगे इसमें लिखा है, कोई सदिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति है। एकमात्र कृष्ण ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी है, भगवान है। आदि का मतलब होता है प्रथम, उनसे पहले कुछ नहीं था। गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, ईश्वरम परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सचिदानंदमय है, वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है जिनसे अनेक अनेक अवतार ईश्वर विस्तार करते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम वर्णयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा, निर्विशेष ब्रह्म, दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों पर लागू है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पे लोग हैं, आर्य और अनार्य। हाँ, पहले जमाने में सबको कहते थे हे आर्य। तो आर्य का अर्थ होता है जो अपने जीवन के मूल्य को समझ गया। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। मनुष्य जीवन पाकर के भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जान पूछ कर विष खा लिया। एक होता है अनजाने में विष खाना, जैसे हम खा रहे हैं आजकल पॉल्यूशन के रूप में विष खा रहे हैं। दूसरा आदमी सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं आ रहा है अनजाने में। गाड़ियों का धुआं आ रहा है, इस तरह से, और पानी के अंदर मिलावट है, खाने में मिलावट है, आम को पकाया जा रहा है इंजेक्शन से, फिर लोग मैंगो शेक पी रहे हैं, तो इस तरह से जो हम खा रहे हैं ये अनजाने में विष खाना है। लेकिन राधा कृष्ण का भजन ना करना, जानिया सुनिया, जान सुन करके विष खाइनू, जान पूछ कर विष खा रहे हैं, तो क्या है, जान पूछ के विष खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते हैं? तो दो हैं, जो जान के विष खा रहे हैं वो है अनार्य, और जो लोग विष नहीं खा रहे हैं भजन कर रहे हैं वो है आर्य। तो आप लोग क्या बनना चाहते हैं, अनार्य या आर्य? आर्य, इसलिए आर्य बोले जाते थे लोग। जिन पुरुषों की भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे किंतु युद्ध से विचलित होकर वे अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, उसकी ये कायरता अनार्यों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम काम धंधा छोड़ दो और है ना फिर उसके बाद सिर्फ भजन करो। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं समा सर्वेशु कालेशु मम अनुस्मरणम युद्ध चा मई अर्पितम मना बुद्धि, अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दो और मेरा ध्यान करते हुए क्या करो, लड़ाई करो अपने कर्तव्य को। जैसे आप ऑफिस में आते हैं तो उस टाइम ये मत सोचिए कि हम बोल रहे हैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए, हम बोल रहे हैं कि जब घर से चले तो ये सोचें आज कृष्ण के लिए नौकरी करने जाना है, जब किसी की कोई पेशेंट आए तो ये सोचें ये भगवान का अंश है आज इसकी सेवा करनी है, जब वापस घर जाएं तो सोचें भगवान आज जो मैंने गलतियां की उसके लिए मुझे क्षमा करना और मुझे शक्ति देना कल मैं फिर आपके परमात्मा अंश रूपी भक्तों की सेवा कर सकूं। ये भावना रखते हुए जो आदमी सेवा भाव से भगवान का भजन करते हुए मन बुद्धि से, वो व्यक्ति सही में भक्त कहलाएगा। तो फिर लोग बोलते हैं कि प्रभु जी ऐसा तो गीता में लिखा है, क्या गीता सही मानने में भगवान भगवान है? क्योंकि उस समय तो भगवान बोलने वाले थे, आज हमें कौन आदेश देगा सही क्या गलत क्या है? तो सही गलत का आदेश देने के लिए हमारे पास है भगवत गीता। तो एक कथा सुनाएंगे और फिर समाप्त करेंगे। अभी कुछ ही समय की बात है, तकरीबन 300 साल पहले बनारस काशी जो देश है वहाँ बहुत ही प्रचलित है, सभी लोग काशी संगम स्नान करना चाहते हैं। तो काशी में एक व्यक्ति थे ब्राह्मण, वो रोज स्नान करने जाते थे और गीता पाठ करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो नदी के किनारे मणिकर्णिका घाट है वहाँ पर स्नान कर रहे थे, तो एक बच्चा बैठा था तकरीबन 6-7 साल का और वो रो रहा था बहुत जोर जोर से। तो ब्राह्मण क्वालिटी से, गुणों से जो ब्राह्मण होते हैं दयावान होते हैं, उन्होंने कहा पुत्र क्या बात है, क्यों इतना विलाप कर रहे हो, रो रहे हो? तो बच्चा बोला ब्राह्मण देव, एक व्यक्ति ने ना मेरी पीठ पे इतनी जोर जोर से वार किया है कि खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, उस दर्द में रो रहा हूं। अच्छा दिखाओ, तो उसने अपनी जो कुर्ता था उतार कर दिखाया तो पीछे खून निकल रहा था। तो उसने कहा ओहो कितना पापी आदमी है, किसने मारा इतने कोमल बच्चे को, चलो मेरे साथ उसके घर पे मैं भी बात करता हूँ। तो उसने उंगली पकड़ी और ब्राह्मण के साथ चलना शुरू कर दिया। अब ब्राह्मण ने भी अपने शरीर को पोंछा नहीं, गीली अवस्था में आधा गीला सर पे टॉवल डालकर चलने लगा। चलते चलते एक गली, दो गली, तीन गली, 10 गली निकली, फिर वो बोला ये घर है? तो उसने देखा, ब्राह्मण ने कहा अरे ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा घर है, इसने मारा तुमको? जब पलट के देखा तो लड़का गायब हो गया, वो समझा नहीं ये कौन था जो कि गायब हो गया। फिर दूसरे दिन वो फिर स्नान करने गया, अब विचलित था कल वो कौन लड़का था, जब स्नान कर रहा था फिर से देखा वही लड़का रो रहा है। अरे क्यों रो रहे हो तुम, कल भी रो रहे थे? कह रहे हैं ब्राह्मण देव इतना दर्द हो रहा है ना, खून निकल रहा है। कह कल मैंने तुम्हें कहा तो था, मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसकी खबर लेता हूँ। कह रहे आज चलो। फिर चले एक गली, दो गली, घूमते फिरते घूम फिर के उसने कहा ये घर है? तो ब्राह्मण ने कहा अरे ये तो मेरा घर है, पलट के देखा फिर बच्चा गायब। अब समझ में नहीं आ रहा वो कौन था, क्या कहना चाहता है। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो किसके पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। तो अपने गुरु के पास गए और गुरु को जाकर सारा वृतांत सुनाया, कहा ऐसा रोज हो रहा है गुरुदेव, क्या चक्कर है? तो गुरुदेव बोले तुमने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है अभी कुछ दिनों में? कहा भगवत गीता। गीता पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है जी गुरुदेव, आपके आदेश अनुसार रोज गीता का अध्ययन करता हूँ। उसमें कुछ काट पीट तो नहीं करते हो? कहा हाँ, जो जो शब्द अच्छे नहीं लगते उन्हें मैं काट देता हूँ। कह रहे मतलब? कह रहे जैसे लिखा है भगवान बड़े दयावान है, अब मैं इतने कष्टों में हूँ, अगर दयावान है तो दया करते क्यों नहीं है? दयावान तो तब है ना जब दीन दुखियों की दया करें, करते नहीं तो मैंने काट दिया। उसमें लिखा योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो जो मेरे पास है उसकी रक्षा करते समझ में आता है, लेकिन जो नहीं है वो प्रदान कहाँ करते हैं। साइकिल थी पिछले 30 सालों से, साइकिल ही है, कुछ बड़ा नहीं, गाड़ी स्कूटर कुछ नहीं आया, काट दिया। तो मैंने पूरे में लाल लाल निशान लगा दिए हैं। तो गुरुदेव बोले बस अब समझ में आ गई सारी बात। वो बच्चा जो है तुम्हें निर्देश दे रहा है कि तुमने जो है ना भगवद गीता को एक पुस्तक समझ लिया। भगवद गीता में सही और गलत नहीं है, भगवद गीता में सिर्फ सही और सही है, गलत नहीं है उसके अंदर। हो सकता है हमारी इस देह आत्मबुद्धि से हम उसको समझ नहीं पा रहे, होता है ना कभी कभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज गलत है। भाई गाड़ी चलानी नहीं आ रही BMW, उसका मतलब वो चलती नहीं है। ऐसा है कि आपको चलानी नहीं आ रही, आप उसमें वही ट्रक वाले गियर डाल रहे हो, उसका गियर अलग है, तो आपको समझ नहीं आ रही वो अलग चीज है। लेकिन ये नहीं कह सकते गीता में ऐसे ही लिख दिया, प्रभु जी भी बोल देते हैं बेकार है। जो ये बोलेगा उससे क्या होता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो वो बच्चा जब दूसरे दिन फिर वे ब्राह्मण देव जब स्नान को पहुंचे तो आज बच्चा मुस्कुरा रहा था। तो उन्होंने पूछा बेटा तुम मुस्कुरा रहे हो क्या हुआ? कह रहे उस व्यक्ति ने जिसने मुझे मारा था मलहम लगा दिया है मेरे इसके ऊपर जहां चोट लगाई थी। कैसा मलहम लगा दिया? कह रहे ये तो मुझे पता नहीं। तो क्या किया था उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने घर जाकर जहां जहां कांटे लगाए थे सबको मिटाया, और मिटाने के बाद प्रायश्चित करने के लिए भगवान का भजन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब उस बच्चे से उन्होंने पूछा आज तुम हंस रहे हो? कह रहे हाँ अब लेप लग गया, अब मैं खुश हूं। तो उन्होंने कहा तुम हो तो बड़े छोटे लेकिन तुमने बात बड़े ज्ञान की समझा दी मुझको। तो उन्होंने कहा तुमको क्या समझाई है, आज से 5000 साल पहले अर्जुन की भी स्थिति थी, उसको भी मैंने ही समझाया। तब उसको समझ में आया ये कौन थे, भगवान थे स्वयं। तो ये नकली घटना नहीं है, 300 साल पहले काशी के देश में, काशी देश जो है अपना, वहां पर ये घटना घटी थी। तो ब्राह्मण ने फिर अपना वृतांत लिखा कि मैंने स्वयं भगवान के दर्शन किए, भगवान मुझे बताने आए कि मुझमें और भगवद गीता में कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए समझते हुए कि ये भगवान की वाणी है। हरे कृष्णा।